बहुत से ख्वाब परस्त दोस्तों की तरह तमन्ना तो मेरी भी बहुत है कि तुर्की और पाकिस्तान का ख्वाहिशाती मवाजना करूं, मगर मवाजने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं मिलता कि तुर्की में भी फौज ने 4 बार जमहूरियत का तख्ता उल्टा और पाकिस्तान में भी। तुर्की में भी पहले मुंतखब वजीर आजम अदनान मंदरीस को फौजी जनता ने फांसी दी और बाद में एक पाकिस्तानी जनरल को भी हौसला मिला कि मुंतखब वजीर आजम लटकाना कोई बड़ा मसला नहीं होता। हालांकि कमाल अतातुर्क ने सिपाही होने के बावजूद 1938 में हाजिर सर्विस फौजियों का सियासत में अमल दखल ममनू करार दे दिया था। हालांकि मोहम्मद अली जिना ने पाकिस्तान बनने के फौरन बाद नौकर शाहों और जनरलों को एक से जायद मर्तबा तंबीह की कि उनके लिए सियासत का फल सुअर बराबर है, मगर क्या किया जाए कि अतातुर्क और जिना साहब के दौर तक अमरीका बस एक मुल्क था, दुनिया पे तारी होने वाली कैफियत नहीं बना था। चुनाचे इस कैफियत के तहत 50, 60 और 70 की दहाई में लातिनी अमरीका से इंडोनेशिया तक फौजी जनता की हुक्मरानी फैशन और इस्तेहकाम का इस्तारा हो गई, क्योंकि सोवियत यूनियन से लंगोट कस सर्द जंग भी तो लड़ना थी। इत्तहादों के डोरे डाले गए, तुर्की नेटो और सेंटो में और पाकिस्तान सेंटो और सीएटो में घसीटा गया और 1958 में पाकिस्तान को और 1960 में तुर्की को जनरल अयूब खान और जनरल जमाल गुरसल की शक्ल में एक एक मर्दे आहन अता हो गया। फौज एक बार खेमे में घुस जाए तो कहां निकलती है, लिहाजा तुर्की में फौज ने सेकुलरिज्म के मुहाफिज के तौर पे अपना आईनी किरदार पक्का कर लिया और पाकिस्तान में मुस्तकबिल की सिविलियन हुकूमतों के लिए रोबोट फैक्ट्री कायम हुई जिन्हें खाकी रिमोट कंट्रोल पे रखा जा सके। जब जब पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी से बेजारी मुकर्रा हद से बढ़ जाती तो सिविलियंस को मौका मिल जाता, और जब सिविलियंस अपना ही सियासी कच्चापन अपने ही गले का फंदा बना लेते तो फौज फिर ताजा दम हुक्मरानी के लिए तैयार होती। जबकि तुर्क फौज का अमल दखल बतौर रेफरी चूंकि आईनी तौर पे पहली पारी में ही हलाल कर लिया गया था, लिहाजा वहां फौज को कभी भी 3, 4, 5 बरस से ज्यादा बराह रास्त इख्तदार में रहने की जरूरत न पेश आई। फौज ने तुर्की में आखिरी हुकूमत 1997 में गिराई जब नजमुद्दीन अरबकान को माजूल होना पड़ा और फौज की हम कदम अदलिया ने अरबकान की वेलफेयर पार्टी तहलील कर दी। वेलफेयर के जस्ट पे जवासाल अब्दुल्ला गुल और रजब तैयब और दवान वगैरह ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी उठाई जो पहली बार 2002 में भारी अक्सरियत से इख्तदार में आ गई और अब तक है। सवाल यह है कि उर्दवान एंड कंपनी के पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि उन्होंने फौज की इख्तदारी ख्वाहिशात को बतदरीज काबू कर लिया। बड़ा सीधा सा नुस्खा था, पार्टी को मुल्कगीर बनाने की कोशिश करो, मईशत पे संजीदगी से तवज्जो दे के इससे आम आदमी का मफाद जोड़ो और वोट बैंक को तोसी दे के पक्का कर लो। इस बीच अतातुर्क के नजरिए से मुफ्त की छेड़खानी मत करो, जब तुम जमहूरी और दफ्तरी तौर पे मजबूत हो जाओ तब कहीं जाके फौज का सियासी किरदार समेटने पे तवज्जो दो। चुनाचे शुरू के 8 बरस मईशत पे तवज्जो दी गई, इफरात जर 90% से कम करके 6.5% तक लाया गया। मईशत में पहले 5 बरस 7% सालाना के हिसाब से बढ़ोतरी हुई और इस वक्त औसत इजाफा 5% के लगभग है। आज तुर्की के जर मुबादला के जखायर $135 अरब हैं। तुर्की 18वीं बड़ी आलमी मईशत है जिसमें खानदगी का तनासुब 98% है। खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाली आबादी का तनासुब 17% रह गया है। शहरी मिडिल क्लास को अगर एतराज है तो उर्दवान के सख्त गिर तर्ज हुकूमत पर, मगर कस्बाती और देही आबादी उर्दवान का पक्का वोट बैंक है। हिजब इख्तलाफ को उर्दवान के शाहाना मिजाज से यकीनन शिकायत है। अमन व अमान के हालात भी शामी खाना जंगी और कुर्द अलहदगी पसंदी में शिद्दत के सबब खराब हैं। लेकिन सनीचर 15 जुलाई की शब फौजी बगावत के खिलाफ तमाम सियासी जमातें हुकूमत के साथ थीं। कुछ दोस्त पूछ रहे हैं, तुर्की की तरह पाकिस्तान में अगर 5वें कू की कोशिश होती है तो क्या उसे रोका जा सकता है? मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी मुल्कगीर सियासी कुव्वत है जिसका वोट बैंक उस पे मुसलसल एतमाद कर सके और किसी नजात दहिंदा का ख्याल उसके जहन में ना आए? क्या माशी और समाजी तरक्की के जमहूरी समरात से आम आदमी इतना मुतमईन है कि उन्हें बचाने के लिए जान देने से भी दरेग ना करे? ترک ریپبلک کو 15 جولائی کے یوم عوام تک پہنچنے میں 93 برس لگے، ہم تو اب تک 5 جولائی میں ہی پھنسے پڑے ہیں۔